एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो पैसे को लेकर हमारी जो सोच है ना उसे शायद बदल सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई अमीर बनना या पैसों का सही मैनेजमेंट करना ये तो कोई बहुत मुश्किल गणित है या फिर बाजार के उतार चढ़ाव को समझने का खेल है।
हाँ बिल्कुल, लेकिन ये किताब कुछ और ही कहती है। ये कहती है कि मामला उतना जटिल नहीं बल्कि ज्यादा मानवीय है। यू नो, यह हमारे व्यवहार, हमारी भावनाओं और हमारी सोच उससे जुड़ा हुआ है। मैं हूँ आपका साथी मेजबान।
और मैं भी हूँ आपके साथ इस दिलचस्प सफर पर। आज हम मॉर्गन हाउसल की बहुत ही फेमस किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हिंदी में कहें तो पैसे का मनोविज्ञान, इसके जो गहरे विचार है ना उनमें उतरेंगे।
और देखिए, ये किताब आज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक सीधी सी लेकिन अक्सर हम जिसे नजरअंदाज कर देते हैं वो सच्चाई बताती है कि पैसे के मामले में आप कितने सफल होंगे ये आपकी डिग्री या आईक्यू से कहीं ज्यादा आपके बर्ताव पर, आपके व्यवहार पर निर्भर करता है।
और आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहां पैसा इतना मायने रखता है, ये समझना कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और क्यों कुछ खास तरह के फैसले लेते हैं, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।
तो चलिए सबसे पहले इस किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल को थोड़ा जान लेते हैं। कौन है ये? वो सिर्फ एक लेखक ही नहीं है बल्कि द कोलैबोरेटिव फंड नाम की एक वेंचर कैपिटल फर्म में पार्टनर भी हैं।
और पहले वो द मॉटली फूल और द वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे बड़े पब्लिकेशंस के लिए भी लिखते थे, काफी अनुभवी हैं।
सही कहा। और उनकी सबसे खास बात क्या है पता है? वो फाइनेंस को सिर्फ नंबर और चार्ट्स के नजरिए से नहीं देखते हैं, वो उसे इंसानी व्यवहार, इतिहास और यहां तक कि मनोविज्ञान के लेंस से देखते हैं। वो क्या करते हैं कि मुश्किल आर्थिक आइडियाज को कहानियों और आसान मिसालों से समझाते हैं ताकि हम जैसे आम लोग भी उन्हें आसानी से समझ सकें। वो सिर्फ ये नहीं बताते हैं कि क्या करना है बल्कि इस पर ज्यादा जोर देते हैं कि हम वैसा क्यों करते हैं, मतलब वो कौन सी दिमागी उलझने या आदतें हैं जो हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर असर डालती हैं।
अच्छा, तो फिर ये किताब असल में है किस बारे में, मतलब इसका निचोड़ क्या है, क्या कहना चाहते हैं हाउसल?
देखिए, इसका सबसे बड़ा आइडिया या कहने सेंट्रल थीम ये है कि पर्सनल फाइनेंस असल में फाइनेंस से ज्यादा पर्सनल होता है। कहने का मतलब है पैसे का मैनेजमेंट सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारी भावनाओं का खेल है। हाउसल हमें यही समझाना चाहते हैं कि हम पैसे के साथ कैसा रिश्ता रखते हैं ये हमारी जिंदगी के तजुर्बों और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से तय होता है, ना कि सिर्फ ठंडे दिमाग से की गई कैलकुलेशन से।
और ये किताब उस पहेली को भी सुलझाने की कोशिश करती है कि क्यों कई बार बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं।
बिल्कुल, हाउसल का तर्क ये है कि हम अक्सर फाइनेंस को फिजिक्स जैसे किसी हार्ड साइंस की तरह देखते हैं, सोचते हैं कि नियम तय हैं और नतीजे का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन सच तो यह है कि पैसा संभालना एक सॉफ्ट स्किल है जैसे साइकोलॉजी या सोशियोलॉजी। इसमें इंसानी बर्ताव का बहुत बड़ा हाथ है।
अच्छा हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
बिल्कुल, और इसीलिए ये किताब जो पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह होती है ना उसको चैलेंज करती है। जो सलाह अक्सर गणितीय फॉर्मूलों पर तो बहुत ध्यान देती है लेकिन हमारे व्यवहार और भावनाओं वाले पहलू को अनदेखा कर देती है। हाउसल अपनी किताब में करीब 20 छोटे छोटे चैप्टर के जरिए हमें दिखाते हैं कि कैसे लालच, डर, घमंड, उम्मीद और दूसरों से अपनी तुलना करने जैसी भावनाएं हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को चुपके से कंट्रोल करती हैं। देखिए, ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम वाली किताब नहीं है,
बिल्कुल नहीं,
बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच को जड़ से बदलने की एक कोशिश है।
तो चलिए इस मनोविज्ञान की गहराइयों में उतरते हैं। फिर किताब का एक बड़ा थीम आपने बताया कि हमारी सोच और व्यवहार ही सब कुछ है, हमारी बुद्धि से भी ज्यादा। और हाउसल इसकी शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प विचार से करते हैं, कोई पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। इसका क्या मतलब हुआ, ये थोड़ा समझाइए।
हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी और को पैसों के मामले में कोई अजीब या पागलपन भरा फैसला लेते देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो बेवकूफ़ी कर रहा है। लेकिन हाउसल कहते हैं कि भाई रुको, उस इंसान के लिए उसके अपने अनुभवों और दुनिया को देखने के नज़रिए के हिसाब से वो फैसला शायद बिल्कुल सही लगता हो। मिसाल के तौर पर सोचिए, जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़ी आर्थिक मंदी देखी है वो शायद शेयर बाजार में पैसा लगाने से डरेगा, है ना?
हाँ, बिल्कुल डरेगा।
वहीं दूसरी तरफ जिसने हमेशा बाजार को ऊपर जाते ही देखा है वो शायद ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो। दोनों अपनी अपनी जगह सही लग सकते हैं खुद को।
हाँ, ये बात तो है। मतलब हमारे बचपन के अनुभव, हमारे माँ बाप का पैसों को लेकर रवैया कैसा था, हमने अपने आसपास क्या देखा है, ये सब मिलकर पैसों को लेकर हमारी एक सोच बना देते हैं, एक तरह का मेंटल मॉडल।
एग्जैक्टली।
और इसीलिए पैसे संभालने का कोई एक सही तरीका नहीं है जो सबके लिए काम करे। ये बड़ा पर्सनलाइज मामला है और ये हमें शायद दूसरों के फैसलों पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा रुककर सोचने को भी कहता है।
बिल्कुल। और इसी सोच से जुड़ा एक और अहम पहलू है, कभी पर्याप्त नहीं।
नेवर इनफ।
ये उस खतरनाक सोच के बारे में है जहां इंसान के पास कितना भी आ जाए उसे हमेशा और चाहिए होता है। और अक्सर ये और की चाहत दूसरों को देखकर आती है, जिसे हम सोशल कंपैरिजन या सामाजिक तुलना कहते हैं।
हाँ, कि उसके पास वो है तो मेरे पास क्यों नहीं, पड़ोसी ने बड़ी गाड़ी ले ली तो हमें भी चाहिए, भले ही हमें उसकी जरूरत हो या ना हो।
सही।
हाउजल यहाँ रजत गुप्ता जैसे बहुत सफल और अमीर लोगों का उदाहरण देते हैं। सोचिए, वो पहले से ही करोड़पति थे लेकिन और ज्यादा कमाने के लालच में गैर कानूनी काम कर बैठे। नतीजा, इज्जत और पैसा दोनों गंवा दिया।
बाप रे।
ये दिखाता है कि जब सफलता का पैमाना बाहरी चीजें बन जाती हैं, जैसे दूसरों से ज्यादा पैसा या बड़ी चीजें, तो दिमाग कैसे भटक सकता है। तो इसका हल क्या है, इस नेवर इनफ वाली सोच से कैसे बचें?
हाउजिल कहते हैं अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करो। ये समझना कि आपकी खुशी और संतुष्टि के लिए कितना पैसा, कितनी चीजें काफी हैं, वरना ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती।
और यहीं पर शायद वो लाइफस्टाइल क्रीप का खतरा भी आता है ना?
हाँ बिल्कुल। लाइफस्टाइल क्रीप मतलब वो आदत जब आमदनी बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी उसी रफ्तार से बढ़ जाते हैं और हम कभी असल में आगे बढ़ ही नहीं पाते, सेविंग्स वहीं की वहीं रह जाती हैं।
बिल्कुल सही कहा। और इसी मानसिकता से जुड़ा एक और विचार है जिसे हाउजल कहते हैं तर्क संगत से ज्यादा व्यवहारिक।
रीजनेबल रैशनल।
हाँ, फाइनेंस की दुनिया अक्सर हमें पूरी तरह तर्क संगत यानी एकदम लॉजिकल होने को कहती है, हर फैसला नंबरों और फायदों के हिसाब से लो। लेकिन हाउजल कहते हैं कि सिर्फ तर्क संगत होना काफी नहीं है, व्यवहारिक होना ज्यादा जरूरी है।
व्यवहारिक मतलब
ऐसी रणनीति चुनना जिसे हम लंबे समय तक निभा सकें, खासकर मुश्किल वक्त में, भले ही वो कागज पर सबसे अच्छी ना दिखे, ये मतलब है।
हाँ बिल्कुल यही। जैसे शायद बैंक में कुछ कैश रखना गणित के हिसाब से तर्क संगत न हो क्योंकि उस पर ब्याज कम मिलता है, लेकिन अगर इससे हमें रात को चैन की नींद आती है और बाजार गिरने पर हम घबराकर अपने सारे निवेश बेचते नहीं हैं तो ये ज्यादा व्यावहारिक हुआ ना।
हाँ बिल्कुल, ये हमारी भावनाओं और मानसिक शांति को भी अहमियत देता है, ये नहीं कि बस नंबर देखो।
एकदम सही। यह हमें परफेक्ट होने के दबाव से आजाद करता है। चलो अब आते हैं एक और बड़े थीम पर, रिस्क, लक और टाइम को समझना। हाउजल कहते हैं कि भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये बड़े जुड़े हुए। हम अक्सर सफलता का सारा श्रेय अपनी मेहनत और काबिलियत को दे देते हैं, है ना, और असफलता के लिए बुरी किस्मत को कोसते हैं। लेकिन सच ये है कि दोनों में भाग्य का बहुत बड़ा हाथ होता है, लक फैक्टर होता है।
उन्होंने बिल गेट्स का उदाहरण दिया है। बेशक वो बहुत बुद्धिमान और मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी सफलता में किस्मत का भी हाथ था। जैसे वो दुनिया के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां 1968 में ही कंप्यूटर आ गया था।
सोचिए 1968 में।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। इसी तरह कभी कभी अच्छी से अच्छी योजना भी किसी बाहरी घटना या बस बुरी किस्मत की वजह से फेल हो जाती है।
तो सबक ये है कि सफलता मिलने पर थोड़ा विनम्र रहना चाहिए और असफलता मिलने पर खुद पर और दूसरों पर थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। ये हमें उन चीजों पर ध्यान देने में मदद करता है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारा अपना व्यवहार और हमारी तैयारी।
और तैयारी की बात करें तो त्रुटि की गुंजाइश, रूम फॉर एरर का विचार बहुत जरूरी हो जाता है।
हाँ बिल्कुल।
इसका मतलब है अपनी योजनाओं में थोड़ी गुंजाइश रखना, एक सेफ्टी नेट बनाना, क्योंकि जिंदगी और बाजार दोनों में उतार चढ़ाव तो आते ही है, हमेशा सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता।
सही। तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, जैसे एक अच्छा इमरजेंसी फंड रखना, मतलब कम से कम 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर पैसा अलग रखना।
हाँ, ये बहुत जरूरी है।
और अपने निवेश में विविधता लाना यानी डाइवर्सिफिकेशन, अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही तरह के एसेट में ना लगाना, ताकि अगर एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से थोड़ी भरपाई हो सके।
और साथ ही बहुत ज्यादा कर्ज लेने से बचना।
बिल्कुल। ये रूम फॉर एरर या कह लें सुरक्षा का मार्जिन हमें मुश्किल वक्त से निकलने और अपनी लॉन्ग टर्म योजनाओं पर टिके रहने में मदद करता है। लंबे समय तक गेम में बने रहने के लिए ये बहुत जरूरी है।
और टिके रहने की बात से याद आया
चक्रवृद्धि की उलझन, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग वाला अध्याय। कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का जादू हम सबने सुना तो है, लेकिन हॉजिल कहते हैं कि हमारा दिमाग इसकी असली ताकत को आसानी से समझ नहीं पाता।
हाँ, क्योंकि ये सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, ये लीनियर नहीं है, ये समय के साथ घातीय एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। धीरे धीरे शुरू होता है, फिर एकदम से तेज हो जाता है।
उन्होंने दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफे का उदाहरण दिया। उनकी ज्यादातर दौलत 50 या 60 साल की उम्र के बाद बनी।
सोचिए जरा, 50-60 के बाद क्यों? क्योंकि उन्होंने दशकों तक लगातार निवेश किया और कंपाउंडिंग को अपना काम करने का वक्त दिया। असली जादू सबसे ज्यादा रिटर्न पाने में नहीं है, असली जादू है ठीक ठाक रिटर्न को लंबे, बहुत लंबे समय तक बनाए रखने में।
और इसके लिए धैर्य चाहिए, और जैसा हमने पहले कहा, व्यवहार पर कंट्रोल चाहिए, क्योंकि बाजार के उतार चढ़ाव में डटे रहने के लिए मजबूत व्यवहार ही काम आता है ना?
एकदम। ये उस बात को फिर से पुख्ता करता है कि पैसे के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने का आपकी होशियारी से बहुत कम लेना देना है, और आपके व्यवहार से बहुत ज्यादा। ये शायद किताब की सबसे अहम लाइन है।
हाँ, ये तो हुई मानसिकता और समय की ताकत की बात, लेकिन असली दौलत का मतलब क्या है, इस पर भी हाउजिल कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। एक है अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वो कहते हैं कि ये दो अलग अलग हुनर हैं, एक नहीं है।
हाँ, बिल्कुल अलग है। अमीर बनने के लिए अक्सर आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, शायद थोड़ा बड़बोलापन भी दिखाना पड़ता है, यू नो, थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए इसके ठीक उल्टे गुण चाहिए। विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर चाहिए, और ये समझ कि जो कमाया है वो जा भी सकता है। इसमें फ्रूगल यानी किफायती होना और बड़ी गलतियों से बचने का अनुशासन, ये सब शामिल है।
उन्होंने रिचर्ड फुस्कन जैसे लोगों का उदाहरण दिया। हार्वर्ड से पढ़े थे, बहुत अमीर बने, लेकिन उसे संभाल नहीं पाए।
हाँ, क्योंकि वो जोखिम लेना बंद नहीं कर सके। अमीर बने रहना असल में सर्वाइवल का खेल है, लंबे समय तक टिके रहने का।
आरा समाज अक्सर महंगी कारों, बड़े घरों और दिखावटी खर्चों को ही अमीरी का पैमाना मान लेता है।
हाँ, बिल्कुल फ्लैशी चीजें, लेकिन हाउजल कहते हैं कि ये अमीरी है, दौलत नहीं। दोनों में फर्क है।
अच्छा, क्या फर्क है?
देखिए, असली दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया, वो बचत और निवेश है जो आपके बैंक अकाउंट में, म्यूचुअल फंड में या प्रॉपर्टी में छुपाए, वो जो बाहर से दिखता नहीं है। हाउजल हमें रोनाल्ड रीड की अविश्वसनीय कहानी बताते हैं, याद है आपको?
हाँ हाँ, वो चौकीदार वाली कहानी।
एग्जैक्टली। एक मामूली चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट जिसने पूरी जिंदगी सादगी से जी, लगातार बचत और निवेश किया, और मरने के बाद पता है कितनी संपत्ति छोड़ी?
कितनी?
$8 मिलियन, यानी करीब 60 करोड़ रुपए।
ओ माय गॉड, कमाल है।
ये दिखाता है कि असली धन अदृश्य होता है, और ये उस कहावत को सच साबित करता है कि लोगों को ये दिखाने के लिए पैसा खर्च करना कि आपके पास कितना पैसा है, कम पैसा रखने का सबसे तेज तरीका है।
वाह, रोनाल्ड रीड की कहानी तो वाकई कमाल की है, और ये हमें सीधे सीधे उस विचार पर ले जाती है कि पैसे का असली मकसद क्या है, क्या सिर्फ चीजें खरीदना?
हाउजल कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। अध्याय स्वतंत्रता, फ्रीडम में वो तर्क देते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा, या कह लें सबसे बड़ा लाभांश, अपने समय पर कंट्रोल पाना है।
अपने समय पर कंट्रोल?
हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। सोचिए, सुबह उठकर ये सोच पाना कि आज मैं वो कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, जहां मैं चाहता हूँ, जिसके साथ मैं चाहता हूँ, ये एहसास किसी भी महंगी गाड़ी या लग्जरी सामान से बढ़कर है।
सही बात है।
बचत हमें सिर्फ भविष्य की सुरक्षा नहीं देती, वो हमें वर्तमान में विकल्प देती है, लचीलापन देती है। यह हमें वो काम करने की आजादी दे सकती है जिसे हम पसंद करते हैं, भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम क्यों ना हो, या किसी मुश्किल बॉस या बुरी नौकरी को छोड़ने का हौसला दे सकती है।
तो असली आजादी।
हाँ, हाउजल कहते हैं धन का उच्चतम रूप हर सुबह उठकर ये कहने की क्षमता है, मैं आज जो चाहूं कर सकता हूं।
तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? अगर हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ सबक निकालने हो, कुछ टेकअवेज लेने हो, तो वो क्या होंगे?
देखिए, पहला और सबसे जरूरी, जैसा हमने बात की, अपने लिए पर्याप्त को परिभाषित करें, वो इनफ वाली लाइन। ये आपको बेवजह की दौड़ और लाइफस्टाइल क्रीप से बचाएगा। अपनी आय बढ़ने पर खर्च बढ़ाने के बजाय बचत दर बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दें, ये ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल। दूसरा, अपने जीवन में त्रुटि की गुंजाइश या वो सेफ्टी मार्जिन जरूर रखें। एक अच्छा इमरजेंसी फंड बनाएं, ज्यादा कर्ज से बचें, और अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करें, मतलब फैला कर रखें।
तीसरा, एक व्यवहारिक लंबी अवधि की निवेश रणनीति अपनाएं। ऐसी जिसे आप सालों साल निभा सकें, चाहे बाजार में कुछ भी हो रहा हो। घबराएं नहीं, कम लागत वाले इंडेक्स फंड में नियमित निवेश शायद एक अच्छा विकल्प हो सकता है कई लोगों के लिए। ऐसी रणनीति चुनें जो आपको रात में सुकून से सोने दे।
ये जरूरी है। चौथा, याद रखें कि असली धन वो है जो दिखता नहीं। दिखावे पर पैसा उड़ाने के बजाय बचत और निवेश पर ध्यान दें, ये आपकी अनदेखी संपत्ति को बढ़ाएगा।
और आखिर में पांचवा पॉइंट, पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल पाने के लिए करें। ऐसे फैसले लें जो ना सिर्फ आपकी कमाई बढ़ाएं, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता, आपकी आजादी और आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाएं, क्योंकि असली दौलत वही है।
तो इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे यादगार या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही इस किताब से? कौन सा आइडिया सबसे ज्यादा क्लिक किया?
मेरे लिए शायद सबसे ज्यादा असरदार विचार तर्कसंगत से ज्यादा व्यावहारिक, रीजनेबल, रैशनल वाला रहा। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि भाई हम इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं और ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। हमें परफेक्ट होने की कोशिश करने के बजाय ऐसी योजना बनानी चाहिए जो हमारी असलियत के साथ काम करे, हमारी साइकोलॉजी के साथ। ये फाइनेंस जैसी डराने वाली चीज को थोड़ा कम डरावना और ज्यादा मानवीय बना देता है। ये मुझे बहुत राहत देने वाला लगा।
अला विचार है। ये हमें याद दिलाता है कि वित्तीय सफलता के लिए बहुत ज्यादा बुद्धिमान या फैंसी होने की जरूरत नहीं है। धैर्य, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच जैसे साधारण गुण भी आपको असाधारण परिणाम दे सकते हैं। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है और ये दिखाती है कि पैसा संभालना एक ऐसा हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है। ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।